श्री चैतन्य चरिता अमृत आदि लीला अध्याय 17 चैतन्य महाप्रभु की युवावस्था की लीलाएं। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ जिनकी कृपा से अशुद्ध यवन भी भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से पूरी तरह सुसंस्कृत बन जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की शक्ति ही ऐसी है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। श्री अद्वैत आचार्य की जय हो तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की जय हो। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की कैशोर लीला का सारांश दे चुका हूँ। अब मैं उनकी यौवन लीलाओं का क्रमानुसार वर्णन करूंगा। अपनी विद्वता, सौंदर्य और सुंदर वेश का प्रदर्शन करके चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य किया, संकीर्तन किया तथा तुप्त कृष्ण प्रेम को जगाने के लिए भगवान के पवित्र नाम का वितरण किया। इस तरह श्री गौर सुंदर अपनी यौवन लीलाओं में काफी चमके। जैसे चैतन्य महाप्रभु युवावस्था में प्रविष्ट हुए, वे सुंदर आभूषण और सुंदर वस्त्र धारण करते, फूलों की माला पहनते और चंदन लेप करते। अपनी शिक्षा से गर्वित एवं अन्य किसी की परवाह न करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने अध्ययन काल में समस्त कोटि के पंडितों को परास्त कर दिया। महाप्रभु ने युवावस्था में शारीरिक वायु विकार के बहाने कृष्ण के प्रति अपना भावमय प्रेम प्रदर्शित किया। इस तरह अपने अंतरंग संगियों के साथ मिलकर उन्होंने विविध लीलाओं का आस्वादन किया। इसके बाद महाप्रभु गया चले गए। वहां उनकी भेंट श्रील ईश्वरपुरी से हुई। गया में श्री चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण की और उसी के तुरंत बाद उनमें भगवत प्रेम के चिन्ह दिखाई दिए। घर लौटने पर भी उनमें ऐसे लक्षण प्रकट हुए। तत्पश्चात महाप्रभु ने अपनी माता चची देवी द्वारा अद्वैत आचार्य के चरण कमलों पर किए गए अपराध को क्षमा करके उन्हें कृष्ण प्रेम प्रदान किया। इस तरह अद्वैत आचार्य से भेंट हुई और उन्हें बाद में भगवान के विश्व रूप का दर्शन मिला। तत्पश्चात श्रीवास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक किया। महाप्रभु ने खाट के ऊपर बैठे बैठे दिव्य ऐश्वर्य प्रकाशित किया। श्रीवास ठाकुर के घर पर इस उत्सव के बाद नित्यानंद प्रभु का वहां आगमन हुआ और जब वे चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्हें महाप्रभु के षडभुज रूप के दर्शन करने का अवसर मिला। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को शंख, चक्र, गदा, कमल, धनुष तथा वंशी धारण किया हुआ अपना षडभुज रूप दिखलाया। तत्पश्चात त्रिभंगी होकर उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया। वे अपने दो हाथों से मुरली बजा रहे थे और अन्य दो हाथों में शंख तथा चक्र धारण किए थे। अंत में महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को महाराज नंद के पुत्र कृष्ण का द्विभुज रूप दिखलाया, जिसमें वे मात्र वंशी बजा रहे थे और अपने श्याम वर्ण शरीर पर पीत वस्त्र धारण किए थे। तब नित्यानंद प्रभु ने भगवान श्री गौर सुंदर की व्यास पूजा अर्थात गुरु पूजा करने का प्रबंध किया, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के भाव में आकर मूशल धारण कर लिया। तत्पश्चात शची देवी ने कृष्ण तथा बलराम दोनों भाइयों को चैतन्य तथा नित्यानंद के स्वरूपों में देखा। तब महाप्रभु ने जगाई तथा माधाई नामक दो भाइयों का उद्धार किया। इस घटना के बाद महाप्रभु 21 घंटों तक बाबा तिरेक की स्थिति में रहे और सारे भक्तों ने उनकी विशेष लीलाएं देखी। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु को वराह अवतार का बाबा वेश हुआ तो वे मुरारी गुप्त के कंधों पर चढ़ गए। फिर मुरारी गुप्त के आंगन में दोनों नाचने लगे। इसके बाद महाप्रभु ने शुक्लांबर ब्रह्मचारी द्वारा दिया हुआ कच्चा चावल खाया और बृहन्नारदीय पुराण में उल्लिखित हरेर नाम श्लोक का विस्तार से भावार्थ बतलाया। इस कलयुग में आत्म साक्षात्कार के लिए भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन, भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन, भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है। इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र भगवान कृष्ण का अवतार है। केवल पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य भगवान की प्रत्यक्ष संगति कर सकता है। जो कोई भी ऐसा करता है उसका निश्चित रूप से उद्धार हो जाता है। इस श्लोक में फल देने के लिए एव निश्चय ही शब्द को 3 बार दोहराया गया है और इसमें हरेर नाम भगवान का पवित्र नाम भी 3 बार दोहराया गया है, जिससे सामान्य लोग इसे समझ सके। केवल शब्द का प्रयोग ज्ञान, योग, तप तथा सकाम कर्म जैसी अन्य विधियों का निषेध करने वाला है। यह श्लोक स्पष्ट बतलाता है कि जो कोई अन्य मार्ग स्वीकार करता है उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता। इसीलिए 3 बार अन्य कुछ नहीं, अन्य कुछ नहीं, अन्य कुछ नहीं कहा गया है। जो आत्म साक्षात्कार की असली विधि पर फल देता है, निरंतर पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए मनुष्य को रास्ते में उगी घास से भी विनीत होना चाहिए और निजी सम्मान की कामना से रहित होना चाहिए, किंतु अन्यों को पूरा आदर देना चाहिए। भगवान नाम कीर्तन में संलग्न व्यक्ति में वृक्ष जैसी सहनशीलता होनी चाहिए। डांटे फटकारे जाने पर भी बदले की भावना से उसे किसी से कुछ नहीं कहना चाहिए। यदि कोई वृक्ष को काटता भी है तो भी वह प्रतिरोध नहीं करता, न ही वह सूखने और मरने पर किसी से जल की याचना करता है। इस प्रकार वैष्णव को किसी से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। यदि कोई बिना मांगे ही कुछ देता है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, किंतु यदि कुछ न मिले तो वैष्णव को शाप तथा फल जो भी मिल सके उन्हें खाकर संतुष्ट होना चाहिए। मनुष्य को सदा नाम कीर्तन करने के सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करना चाहिए और उसे जो कुछ आसानी से मिल जाए उसी से संतुष्ट होना चाहिए। ऐसे भक्तिमय आचरण से उसकी भक्ति सुदृढ़ बनी रहती है। जो अपने आप को घास से भी अधिक तुच्छ मानता है, जो वृक्ष से भी अधिक संहीणु है और जो किसी से निजी सम्मान की अपेक्षा नहीं रखता, फिर भी दूसरों को सम्मान देने के लिए सदा तत्पर रहता है, वह सरलता से सदा भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कर सकता है। मैं अपने हाथ ऊपर उठाकर घोषित कर रहा हूँ, कृपया हर कोई मुझे सुने। इस श्लोक को पवित्र नाम के धागे में पिरोकर निरंतर स्मरण करने के लिए अपने गले में पहन ले। इस श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो सिद्धांत बतलाए हैं उनका दृढ़ता से पालन करना चाहिए। यदि कोई चैतन्य महाप्रभु तथा गोस्वामियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता रहे तो उसे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात श्री कृष्ण के चरण कमल अवश्य प्राप्त होंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु पूरे एक वर्ष तक हर रात्रि को श्री वास ठाकुर के घर पर हरे कृष्ण मंत्र का सामूहिक कीर्तन नियमित रूप से चलाते रहे। यह भावपूर्ण कीर्तन दरवाजे बंद करके किया जाता था, जिससे हंसी उड़ाने की दृष्टि से आने वाले अविश्वासी लोग प्रवेश न कर सके। इस तरह अविश्वासी लोग मानो जलकर राख हो गए और ईर्ष्या से मर गए। बदला लेने के लिए उन्होंने श्रीवास ठाकुर को अनेक प्रकार से कष्ट पहुंचाने की योजना बनाई। एक दिन जब रात में श्रीवास ठाकुर के घर के भीतर कीर्तन चल रहा था, तब गोपाल चापाल नामक एक ब्राह्मण जो नास्तिकों पाषंडियों का अगुआ था और बहुत बातूनी तथा बोलने में अक्खर था, श्रीवास ठाकुर के द्वार के बाहर दुर्गा देवी की पूजन सामग्री रख आया। उसने केले के पत्ते के ऊपर पूजा की सामग्री रखी थी, जिसमें कोड़ फूल, हल्दी, सिंदूर, लाल चंदन का लेप तथा चावल थे। इस सामग्री के पास उसने एक शराब का घड़ा रख दिया था। प्रातः काल जब श्रीवास ठाकुर ने अपना दरवाजा खोला तो उन्हें यह सारी सामग्री दिखाई दी। श्रीवास ठाकुर ने पड़ोस के सारे प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया और हंसते हंसते उनसे इस प्रकार कहा, हे महाशयो, मैं हर रात देवी भवानी की पूजा करता हूँ। क्योंकि पूजा की सारी सामग्री यहाँ उपस्थित है, अब समस्त आदरणीय ब्राह्मणों तथा उच्च जाति के सदस्यों आप मेरी स्थिति को समझ सकते हैं। तब वहां एकत्र सारे सज्जन हाहाकार करके बोले, यह क्या किसने यह बदमाशी की है, वह पापी कौन है। उन्होंने एक झाड़ू लगाने वाले हाड़ी को बुलाया जिसने सारी पूजा सामग्री दूर फेंकी और उस स्थान को जल तथा गोबर से लीप कर शुद्ध किया। 3 दिनों के बाद गोपाल चापाल को कोढ़ हो गया और उसके सारे शरीर में घाव होकर उसमें से रक्त निकलने लगा। उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए और वे उसे निरंतर काटने लगे। गोपाल चापाल को असहज पीड़ा होने लगी। उसका सारा शरीर कष्ट से जलने लगा। क्योंकि कोढ़ छूत का रोग है इसलिए गोपाल चापाल गांव छोड़कर गंगा नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे जा बैठा। एक दिन उसने चैतन्य महाप्रभु को उधर से जाते देखा तो उनसे वह इस तरह बोला, हे भाई, मैं गांव के नाते आपका मामा लगता हूं। देखो ना, इस पुष्ट रोग के आक्रमण ने मुझे किस तरह पीड़ित कर रखा है। आप ईश्वर के अवतार हैं और अनेक पतितात्माओं का उद्धार कर रहे हैं। मैं भी अत्यंत दुखी पतितात्मा हूं, कृपा करके मेरा भी उद्धार कीजिए। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक क्रोधित प्रतीत हुए और उसी क्रोधावेश में उन्होंने उसे कुछ प्रताड़ना भरे शब्द कहे, अरे पापी, शुद्ध भक्तों से द्वेष करने वाले, मैं तुम्हारा उद्धार नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि तुम इसी तरह करोड़ों वर्षों तक इन कीड़ों से काटे जाते रहो। तुमने कुछ ऐसा किया जिससे लगे कि श्रीवास ठाकुर देवी भवानी की पूजा करते हैं। केवल इसी अपराध के लिए तुम्हें करोड़ों जन्मों तक नारकीय जीवन बिताना पड़ेगा। पाषंडियों असुरों को मारने के लिए और उन्हें मारने के बाद भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने हेतु मैं इस अवतार में प्रकट हुआ हूँ। यह कहकर महाप्रभु गंगा स्नान करने चले गए और उस पापी के प्राण नहीं निकले अपितु वह कष्ट भोगता रहा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी गए और फिर लौटकर पुलिया गांव आए तब उस पापी ने महाप्रभु के चरण कमलों की चरण ग्रहण की। तब महाप्रभु ने कृपा करके उसके लाभ के लिए उसे उपदेश दिया। महाप्रभु ने कहा, तुमने श्रीवास ठाकुर के चरण कमलों पर अपराध किया है, अतएव सबसे पहले तुम वहां जाओ और उनसे कृपा की याचना करो। तब यदि वे तुम्हें आशीर्वाद देते हैं और तुम फिर से ऐसे पाप नहीं करते तो तुम इन पाप फलों से मुक्त कर दिए जाओगे। तब वह ब्राह्मण गोपाल चापाल श्रीवास ठाकुर के पास गया और उसने उनके चरण कमलों की शरण ली और श्रीवास ठाकुर की कृपा से वह सारे पापों के बल से मुक्त हो गया। एक दूसरा ब्राह्मण कीर्तन देखने आया किंतु दरवाजा बंद था, अब वह भीतर नहीं जा पाया। वह दुखी मन से घर लौट गया। किंतु दूसरे दिन गंगा के तट पर वह महाप्रभु से मिला तो उनसे बोला। वह ब्राह्मण कटुभाषी था और दूसरों को शाप देने में पटु था। उसने अपना जनेऊ तोड़ डाला और घोषित किया, अब मैं तुम्हें शाप दूंगा क्योंकि तुम्हारे व्यवहार से मुझे घोर कष्ट हुआ है। उस ब्राह्मण ने महाप्रभु को शाप दिया, तुम सारे भौतिक सुखों से वंचित हो जाओगे। जब महाप्रभु ने इसे सुना तो उन्हें मन ही मन अधिक हर्ष हुआ। जो कोई भी श्रद्धावान व्यक्ति उस ब्राह्मण द्वारा महाप्रभु के शाप देने की बात को सुनता है वह समस्त ब्रह्म शापों से छूट जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद दत्त को प्रसाद रूप में धन दिया और इस तरह उसके सारे मानसिक अवसाद को दूर कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को अपने गुरु के रूप में सम्मान देते थे, किंतु अद्वैत आचार्य उनके ऐसे व्यवहार से अत्यधिक दुखी थे। अतः विनोद पूर्वक वे ज्ञान मार्ग की व्याख्या करने लगे और महाप्रभु ने क्रोध में आकर ऊपरी तौर पर उनका अनादर किया। तब अद्वैत आचार्य अत्यधिक हर्षित हुए। महाप्रभु यह समझ गए और कुछ कुछ लज्जित हुए, किंतु उन्होंने अद्वैत आचार्य को इच्छित वर दिया। मुरारी गुप्त भगवान रामचंद्र के महान भक्त थे। जब महाप्रभु ने उनके मुंह से भगवान रामचंद्र की महिमा सुनी तो उन्होंने तुरंत उनके मस्तक पर रामदास, भगवान रामचंद्र का नित्य दास लिख दिया। एक बार चैतन्य महाप्रभु कीर्तन के बाद श्रीधर के घर गए और वहां उन्होंने उनके एक टूटे फूटे लोहे के बर्तन में पानी पिया। तत्पश्चात उन्होंने सारे भक्तों को इच्छित वर दिए। इस घटना के बाद महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को आशीर्वाद दिया और अद्वैत आचार्य के घर पर अपनी माता के अपराध का खंडन किया। एक बार महाप्रभु ने भक्तों से नाम की महिमा बताई, किंतु कुछ सामान्य विद्यार्थियों ने सुनकर उसकी मनगढ़ंत व्याख्या की। जब किसी विद्यार्थी ने पवित्र नाम की महिमा की अतिशयोक्ति युक्त प्रार्थना के रूप में व्याख्या दी तो चैतन्य महाप्रभु अत्यंत दुखी हो उठे और उन्होंने तुरंत सबको भविष्य में उस विद्यार्थी का मुंह भी न देखने के लिए चेतावनी दी। महाप्रभु ने बिना कपड़े उतारे अपने संगियों समेत गंगा नदी में स्नान किया। वहां उन्होंने भक्ति की महिमा की व्याख्या की। ध्यान, कर्म या इंद्रियों को वश में करने के लिए योग के मार्ग का अनुसरण करके भगवान कृष्ण को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता का एकमात्र कारण उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, न तो अष्टांग योग द्वारा न ही निर्विशेष अद्वैतवाद द्वारा न परम सत्य विषयक वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा न वेदों के अध्ययन द्वारा, न तपस्या, न दान द्वारा, न संन्यास द्वारा मुझे उतना प्रसन्न किया जा सकता है जितना कि मेरी अनन्य भक्ति विकसित करके किया जा सकता है। तब चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त की प्रशंसा यह कहते हुए की, तुमने भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर लिया है। यह सुनकर मुरारी गुप्त ने श्रीमद् भागवत का एक श्लोक सुनाया, चूंकि मैं गरीब पापी ब्रह्म बंधु मात्र हूँ, अर्थात ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी ब्राह्मण योग्यता से रहित हूँ, और आप हे भगवान कृष्ण लक्ष्मी देवी के आश्रय हैं, इसलिए मेरे लिए यह आश्चर्यजनक ही है कि आपने अपनी भुजाओं से मेरा आलिंगन किया है। एक दिन महाप्रभु ने अपने सभी भक्तों के साथ मिलकर संकीर्तन किया, और जब सभी लोग थक गए तो वे बैठ गए। तब महाप्रभु ने आंगन में एक आम की गुठली बोई, और तुरंत ही वह गुठली वृक्ष का रूप धारण करके बढ़ने लगी। लोगों के देखते देखते वह वृक्ष बढ़ गया और उसमें फल लग गए, और वे फल पकने भी लगे। इस तरह सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। महाप्रभु ने तुरंत ही उसमें से लगभग 200 फल तोड़े, और तोड़ने के बाद उनका कृष्ण को भोग लगाया। ये फल लाल तथा पीले थे, उनमें न तो गुठली थी न छिलका, और एक ही फल खाने से मनुष्य का पेट भर सकता था। आमों का गुण देखकर महाप्रभु अत्यंत संतुष्ट हुए, और पहले स्वयं खाने के बाद अन्य सभी भक्तों को खिलाए। फलों में गुठली या छिलका नहीं था, वे सभी अमृत के समान मीठे रस से भरे थे, और इतने मीठे थे कि एक ही फल खाने से मनुष्य पूरी तरह संतुष्ट हो जाए। इस तरह 12 महीने प्रतिदिन उस वृक्ष में फल लगते रहे, और वैष्णव जन उन्हें खाते रहे, जिससे महाप्रभु को परम संतोष मिलता था। ये है शकी पुत्र की गुह्य लीलाएं। भक्तों के अतिरिक्त इस घटना को अन्य कोई नहीं जानता। इस प्रकार महाप्रभु प्रतिदिन संकीर्तन करते, और 12 मास संकीर्तन के बाद प्रतिदिन आम खाने का उत्सव मनाया जाता था। एक बार जब महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे तो आकाश में बादल छा गए। महाप्रभु ने अपनी इच्छा से तुरंत ही उन्हें बरसने से रोक दिया। एक दिन महाप्रभु ने श्री वास ठाकुर से बृहत सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने के लिए कहा, क्योंकि महाप्रभु को उस समय उन्हें सुनने की इच्छा हुई। जब वे विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ रहे थे तो भगवान नरसिंह का पवित्र नाम आया। नरसिंह नाम सुनते ही महाप्रभु भाव में पूरी तरह निमग्न हो गए। चैतन्य महाप्रभु भगवान नरसिंह देव के आवेग में सारे नास्तिकों का वध करने के लिए उद्यत होकर हाथ में गदा लेकर नगर की सड़कों में दौड़ने लगे। लोग उन्हें नरसिंह भगवान के आवेश में अत्यंत भयानक रूप में देखकर एवं उनके क्रोध से भयभीत होकर सड़कों से दौड़कर इधर उधर भाग गए। लोगों को इस तरह भयभीत देखकर महाप्रभु को बाह्य चेतना आई, अतएव श्रीवास ठाकुर के घर लौट आए और गदा फेंक दी। महाप्रभु खिन्न हुए और उन्होंने श्रीवास ठाकुर से कहा, जब मैंने भगवान नरसिंह देव का आवेश धारण किया तो लोग बहुत भयभीत हो उठे, अतएव मैं रुक गया, क्योंकि लोगों में भय उत्पन्न करना अपराध है। श्रीवास ठाकुर ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति आपका पवित्र नाम लेता है उसके 1 करोड़ अपराध भी तुरंत क्षय हो जाते हैं। नरसिंह रूप प्रकट करके आपने कोई अपराध नहीं किया, बल्कि जिस किसी व्यक्ति ने आपको उस आवेश में देखा वह तुरंत ही भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो गया। यह कहकर श्रीवास ठाकुर ने महाप्रभु की पूजा की, जिससे वे परम तुष्ट हुए और अपने घर चले गए। दूसरे किसी दिन शिव जी का कोई महान भक्त महाप्रभु के घर आया और वह शिव जी के गुणों का वर्णन कर करके आंगन में नाचने और अपना डमरू बजाने लगा। तब चैतन्य महाप्रभु शिव जी के भावा वेश में उस व्यक्ति के कंधे पर चढ़ गए और इस तरह लंबे समय तक दोनों साथ साथ नाचते रहे। दूसरे किसी दिन एक भिक्षु महाप्रभु के घर भिक्षा मांगने आया, किंतु जब उसने महाप्रभु को नाचते देखा तो वह भी नाचने लगा। वह महाप्रभु के साथ नाचने लगा क्योंकि उसे कृष्ण प्रेम की कृपा प्राप्त हुई। इस प्रकार वह भगवत प्रेम के रस में बहने लगा। दूसरे किसी दिन एक ज्योतिषी आया, जो भूत वर्तमान और भविष्य सभी जानने वाला माना जाता था। अतएव महाप्रभु ने उसका सम्मान किया और उससे यह प्रश्न पूछा। महाप्रभु ने पूछा, कृपया मुझे अपनी ज्योतिष गणना से बताएं कि मैं पिछले जन्म में कौन था। महाप्रभु की यह बात सुनकर ज्योतिषी तुरंत गणना करने लगा। उस सर्वज्ञ ज्योतिषी ने गणना और ध्यान के माध्यम से महाप्रभु के अत्यंत ओजस्वी शरीर को देखा, जो अनंत वैकुंठ लोकों का आश्रय स्थल है। श्री चैतन्य महाप्रभु को उसी परम सत्य परम ब्रह्म भगवान के रूप में देखकर वह ज्योतिषी किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। वह ज्योतिषी आश्चर्यचकित होकर मौन रह गया, वह कुछ बोल नहीं सका। किंतु जब महाप्रभु ने फिर वही प्रश्न पूछा तो उसने इस प्रकार उत्तर दिया, हे प्रभु, पिछले जन्म में आप समस्त सृष्टि के आश्रय सब ऐश्वर्यों से पूर्ण भगवान थे। आप अब भी वही भगवान हैं जो अपने पूर्व जन्म में थे। आपका स्वरूप अचिंत्य एवं सनातन आनंदमय है। जब ज्योतिषी महाप्रभु के विषय में बड़ी बातें कर रहा था तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसे रोका और हंसते हुए कहा, हे महोदय, मुझे लगता है कि आप ठीक से नहीं जानते कि मैं कौन था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पिछले जन्म में मैं ग्वाल बाल था। मैं अपने पिछले जन्म में ग्वालों के परिवार में उत्पन्न हुआ था और मैंने गायों तथा बछड़ों को संरक्षण प्रदान किया था। ऐसे पुण्य कर्मों के ही कारण अब मैं ब्राह्मण पुत्र के रूप में आया हूँ। ज्योतिषी ने कहा, मैंने ध्यान में जो कुछ देखा वह ऐश्वर्यमय था, इसीलिए मैं भ्रमित हो गया। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपका यह स्वरूप तथा ध्यान में देखा गया स्वरूप एक ही है। यदि मुझे भेद कोई दिखता है तो यह आपकी माया का काम है। वह सर्वज्ञ ज्योतिषी इसी नतीजे पर पहुंचा, आप जो भी और जो कुछ भी हैं, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तब महाप्रभु ने अपनी अहेतुकी कृपा से उसे भगवत प्रेम प्रदान किया और उसकी सेवा का उसे फल मिल गया। एक दिन महाप्रभु विष्णु मंदिर की बारादरी में बैठकर जोर जोर से पुकारने लगे, थोड़ा शहद लाओ, थोड़ा शहद लाओ। नित्यानंद प्रभु गोसाई श्री चैतन्य महाप्रभु के भावावेश को समझ गए। अब उन्होंने संकेत के रूप में एक बर्तन में गंगा जल लाकर उनके सम्मुख रख दिया। उस जल को पीने के बाद भगवान चैतन्य इतने भावाविष्ट हो गए कि वे नाचने लगे। इस प्रकार सबने यमुना आकर्षण लीला देखी। जब महाप्रभु बलदेव के भावावेश में मधु पी कर उन्मत्त होकर घूम रहे थे तो आचार्यों में प्रमुख आचार्य शेखर अद्वैत आचार्य ने उन्हें बलराम के रूप में देखा। वनमाली आचार्य ने बलराम के हाथ में सोने का हल देखा और सारे भक्त एकत्र होकर आवेश में आकर नाचने लगे। इस तरह वे 12 घंटों तक नाचते रहे और संध्या समय गंगा में स्नान करने के बाद अपने अपने घर चले गए। महाप्रभु ने नवद्वीप के सारे नागरिकों को हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने का आदेश दिया और वे घर घर में नियमित रूप से संकीर्तन करने लगे। सारे भक्त हरे कृष्ण महामंत्र के साथ यह लोकप्रिय गीत भी गाने लगे। हरे य नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। जब इस तरह संकीर्तन आंदोलन आरंभ हो गया तो नवद्वीप में हरी हरी शब्दों की ध्वनि एवं मृदंग तथा करताल बजने की ध्वनि के अतिरिक्त कोई अन्य ध्वनि किसी को सुनाई नहीं पड़ती थी। हरे कृष्ण मंत्र की गुंजायमान ध्वनि सुनकर स्थानीय मुसलमानों ने अत्यंत क्रुद्ध होकर काजी के पास शिकायत की। क्रोध से भरा चांद काजी एक दिन संध्या समय एक घर में आया और जब उसने देखा कि कीर्तन चल रहा है तो उसने मृदंग तोड़ डाला और फिर इस प्रकार बोला, आज तक तुम सब ने हिंदू धर्म के नियम सिद्धांतों का पालन नहीं किया किंतु अब बड़े उत्साह से करने लगे हो। क्या मैं जान सकता हूँ कि किसके बल पर ऐसा कर रहे हो? कोई भी व्यक्ति नगर की सड़कों में संकीर्तन नहीं करेगा। हाँ, आज मैं इस अपराध को क्षमा करके घर वापस जा रहा हूँ। यदि अगली बार मैंने किसी को ऐसा संकीर्तन करते देखा तो दंड स्वरूप न केवल उसकी सारी संपत्ति जब्त कर लूंगा अपितु उसे मुसलमान भी बना दूंगा। यह कह कर काजी घर चला गया, किंतु हरे कृष्ण कीर्तन करने से वर्जित किए जाने के फल स्वरूप दुखी भक्तों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपना दुखड़ा सह सुनाया। महाप्रभु चैतन्य ने आज्ञा दी, जाओ संकीर्तन करो, मैं आज सारे मुसलमानों को मार डालूंगा। सारे नागरिक घर लौट कर संकीर्तन करने लगे, किंतु काजी के आदेश के कारण वे चिंता मुक्त न थे, वे सदैव चिंता से घिरे रहते थे। लोगों के मन में घर कर गई चिंता को समझते हुए महाप्रभु ने उन सब को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा, मैं प्रत्येक नगर नगर में जाकर संध्या समय संकीर्तन करूंगा। अतएव तुम लोग संध्या समय नगर को सजाओ, संध्या समय घर घर में मशाल जलाओ, मैं हर एक की रक्षा करूंगा। मैं देखूंगा कि कौन सा काजी आकर हमारे कीर्तन को रोकता है। संध्या समय भगवान गौर सुंदर बाहर गए और कीर्तन करने के लिए उन्होंने 3 मंडलियां बना ली। मंडली के आगे आगे ठाकुर हरिदास नाच रहे थे और मंडली के बीच में परम हर्ष के साथ अद्वैत आचार्य नाच रहे थे। भगवान गौर सुंदर पीछे वाली मंडली में नाच रहे थे और श्री नित्यानंद प्रभु नाचते हुए चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ चल रहे थे। महाप्रभु की कृपा से श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने इस घटना का विस्तृत वर्णन चैतन्य मंगल अब चैतन्य भागवत में किया है। इस तरह कीर्तन करते हुए नगर के हर गली कूचे की परिक्रमा करते हुए अंत में वे काजी के दरवाजे पर पहुंचे। क्रोध से फुसफुसाते और गर्जना करते हुए सारे लोग महाप्रभु के संरक्षण में ऐसा करते हुए पागल हो उठे। हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन की ऊंची गर्जना से काजी निश्चय ही अत्यधिक डर गया और वह अपने कमरे में छिप गया। लोगों को इस प्रकार विरोध करते और अत्यंत क्रोध में बुदबुदाते सुनकर काजी अपने घर से बाहर नहीं आ सका। स्वाभाविक रूप से लोग बहुत उत्तेजित हो गए थे और वे काजी के घर को तथा फूलों के बगीचे को तोड़ फोड़ कर उसके किए का बदला लेने लगे। श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने इस घटना का विस्तार से वर्णन किया है। तत्पश्चात जब महाप्रभु काजी के घर पहुंच गए तो वे दरवाजे पर बैठ गए और काजी को बुलाने कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भेजा। जब काजी अपना सिर झुकाए आया तो महाप्रभु ने उसका सम्मान किया और उसे बैठने के लिए आसन दिया। महाप्रभु ने मैत्री पूर्वक कहा, हे महोदय, मैं आपके घर अतिथि के रूप में आया हूँ, किंतु आप हैं कि मुझे देखकर अपने कमरे में छिप गए, यह कैसा शिष्टाचार है। काजी ने कहा, आप मेरे घर अत्यंत क्रोधित होकर आए हैं। आपको शांत करने के लिए मैं तुरंत आपके सामने नहीं आ पाया, वरना अपने आप को छुपा लिया। क्योंकि अब आप शांत हो चुके हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। यह मेरा अहोभाग्य है कि मैं आप जैसे महान अतिथि का स्वागत कर रहा हूँ। गांव के नाते नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर मेरे चाचा लगते थे। ऐसा नाता शारीरिक संबंध से अधिक सुदृढ़ होता है। नीलांबर चक्रवर्ती तुम्हारे नाना हैं, अतएव तुम इस नाते मेरे भांजे हुए। जब भांजा अत्यधिक नाराज होता है तब मामा सहता है, और जब मामा कोई अपराध करता है तो भांजा उस पर ध्यान नहीं देता। इस तरह महाप्रभु तथा काजी एक दूसरे से संकेतों से बातें करते रहे, किंतु कोई बाहरी व्यक्ति उनकी वार्ता के आंतरिक अर्थ को नहीं समझ सकता था। महाप्रभु ने कहा, हे मामा, मैं आपके घर आपसे कुछ प्रश्न पूछने आया हूँ। काजी ने उत्तर दिया, आपका स्वागत है, अपने मन की बात मुझे बतलाओ। महाप्रभु ने कहा, आप गाय का दूध पीते हैं, अब एव गाय आपकी माता हुई और बैल आपके वरण के लिए अन्न उपजाता है, इसलिए वह आपका पिता हुआ। क्योंकि गाय तथा बैल आपके माता पिता हैं, तो फिर आप उन्हें मार कर कैसे खा सकते हैं? यह कैसा धर्म है? आप किस बल पर ऐसे पाप कर्म करने का दुस्साहस करते हैं? काजी ने उत्तर दिया, जिस तरह आपके शास्त्र हैं, इन्हें वेद तथा पुराण कहते हैं, उसी तरह हमारा भी पवित्र शास्त्र है जो पुराण कहलाता है। पुराण के अनुसार उन्नति के दो मार्ग हैं, भोग की प्रवृत्ति को प्रबल करना तथा भोग की प्रवृत्ति को कम करना। आसक्ति कम करने के मार्ग निवृत्ति मार्ग में पशुओं की हत्या निषिद्ध है। भौतिक कार्यकलापों के मार्ग में गोवध का नियम है। यदि शास्त्र के निर्देशानुसार ऐसा वध किया जाए तो इसमें पाप नहीं लगता। उस दिन काजी ने एक विद्वान के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा, आपके वैदिक शास्त्रों में गोवध का आदेश मिलता है, इसी आदेश के बल पर बड़े बड़े मुनि गोवध वाले गोमेद यज्ञ करते थे। काजी के कथन का प्रतिवाद करते हुए महाप्रभु ने तुरंत कहा, वेदों का स्पष्ट आदेश है कि गोवध न किया जाए, अतएव कोई भी हिंदू गोवध करने से बचता है। वेदों तथा पुराणों में स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई किसी जीव को पुनर्जीवित कर सकता है तो वह प्रयोग के निमित्त उसे मार सकता है। इसलिए महान मुनिगण कभी कभी वृद्ध गायों को मारते थे और सिद्धि के लिए वे वैदिक स्रोतों का उच्चारण करके उन्हें जीवित कर लेते थे। ऐसी वृद्ध तथा अशक्त गायों का वध एवं उनको फिर से युवा बनाना वास्तव में वध करना नहीं था, अपितु बड़े ही लाभ का कर्म था। पूर्व काल में ब्राह्मणों में इतना सामर्थ्य होता था कि वे वैदिक स्रोतों द्वारा ऐसे प्रयोग करते थे, किंतु अब कलयुग के कारण ब्राह्मण उतने समर्थ नहीं रहे। अतएव गायों तथा भैलों को फिर से युवा बनाने के लिए उनका वध करना वर्जित है। इस कलयुग में 5 कर्म वर्जित हैं: अश्वमेध यज्ञ करना, गोमेध यज्ञ करना, संन्यास ग्रहण करना, पूर्वजों को मांस का पिंड दान देना तथा अपने भाई की पत्नी से पुत्र उत्पन्न करना। क्योंकि आप मुसलमान लोग मरी गायों को जीवित नहीं कर सकते, अतएव आप उनके वध के लिए उत्तरदायी हो, इसलिए आप नरक जा रहे हो और आपके मोक्ष के लिए कोई मार्ग नहीं है। गोवध करने वालों को उतने हजार वर्षों तक नरक में सड़ना पड़ता है जितने रोए उस गाय के शरीर में होते हैं। आपके शास्त्रों में अनेक त्रुटियां और भ्रांतियां हैं। इनके रचयिताओं ने ज्ञान का सार न जानने के कारण ऐसे आदेश दिए जो विवेक एवं तर्क के विरुद्ध थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के इन कथनों को सुनकर काजी तर्कहीन हो गया और आगे एक भी शब्द न बोल सका। इस तरह पूर्ण विचार करके काजी ने हार स्वीकार कर ली और इस प्रकार कहा, हे निमाई पंडित, आपने जो कुछ कहा है वह पूरी तरह सत्य है। हमारे शास्त्र हाल ही में विकसित हुए हैं और निश्चित रूप से वे तर्क संगत तथा विचार पूर्ण नहीं हैं। मुझे पता है कि हमारे शास्त्र कल्पना तथा भ्रांतियों से भरे हैं, तथापि अपर्याप्त आधार होने पर भी एक मुसलमान होने के नाते अपने समुदाय के निमित्त मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। काजी ने अंत में कहा, मांसाहारी यवनों के शास्त्रों के तर्क सुदृढ़ नहीं है। यह कथन सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने हंसते हुए उससे इस प्रकार पूछा, हे मामा, मैं आपसे दूसरा प्रश्न करना चाहता हूँ, कृपया आप सच सच बतलाएं, आप मुझे छलने का प्रयास न करें। आपके नगर में सदैव पवित्र नाम का कीर्तन होता रहता है, सदैव संगीत की ध्वनि, गान और नृत्य चलता रहता है। मुसलमान मैजिस्ट्रेट काजी होने के नाते आप हिंदू उत्सवों को मनाने का विरोध कर सकते हैं, किंतु अब आप उन्हें नहीं रोकते। मैं इसका कारण नहीं समझ सकता। काजी ने कहा, सभी लोग आपको गौर हरि कहते हैं, कृपया अब मुझे भी आप इसी नाम से पुकारने दें। हे गौर हरि, कृपया सुनिए, यदि आप एकांत स्थान में आए तो मैं कारण समझा दूंगा। महाप्रभु ने उत्तर दिया, ये सारे लोग मेरे अंतरंग साथी हैं, आप निःसंकोच भाव से कहें, इनसे डरने की कोई बात नहीं है। काजी ने कहा, जब मैं हिंदू के घर गया और वहां मैंने मृदंग तोड़ा और संकीर्तन करने की मनाही कर दी, तो उसी रात मैंने सपने में एक भयानक गर्जन करता हुआ सिंह देखा, जिसका शरीर तो मनुष्य जैसा था किंतु उसका मुख सिंह जैसा था। जब मैं सो रहा था तब वह सिंह मेरी छाती पर कूद पड़ा। वह अट्टाक कर रहा था और अपने दांत कटकटा रहा था। सिंह ने मेरी छाती पर अपने नाखून घड़ाते हुए भयानक स्वर में कहा, क्योंकि तुमने मृदंग तोड़ा है इसलिए मैं तुम्हारी छाती को अभी फाड़ देने जा रहा हूँ। तुमने मेरे संकीर्तन पर प्रतिबंध लगाया है, अतएव मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। उससे डर कर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और कांपने लगा। मुझे इस तरह डरा देखकर सिंह बोला, तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही मैंने तुम्हें पराजित किया है, किंतु अब मुझे तुम पर कृपालु होना चाहिए। उस दिन तुमने कोई बड़ा उत्पात नहीं मचाया, इसलिए मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है और तुम्हारे प्राण नहीं लिए। किंतु यदि तुम फिर से ऐसा कार्य करोगे तो मैं सहन नहीं करूंगा। तब मैं तुम्हें, तुम्हारे सारे परिवार को और सारे मांसाहारी यवनों को मार डालूंगा। यह कहकर सिंह चला गया, किंतु मैं उससे बहुत ही भयभीत था। देखिए न मेरे हृदय पर बने उसके नाखूनों के चिन्हों को। इस वर्णन के बाद काजी ने अपनी छाती दिखाई। उसकी बातें सुनकर तथा चिन्हों को देखकर सारे लोग इस विस्मयकारी घटना को मान गए। काजी ने कहा, मैंने इस घटना की बात किसी से नहीं की, किंतु उसी दिन मेरा एक अर्दली सेवक मुझसे मिलने आया। मेरे पास आकर उस अर्दली ने कहा, जब मैं संकीर्तन रोकने गया तो सहसा मेरे मुंह पर आग की लपटें टकरा गई, मेरी दाढ़ी जल गई और मेरे गालों पर फफोले पड़ गए। जो भी अर्दली वहां गया उसने वैसा ही विवरण दिया। यह देखकर मैं अत्यधिक डर गया। मैंने उनसे संकीर्तन को न रोककर घर पर बैठने के लिए कहा। तब सारे मांसाहारी यवनों ने यह सुनकर कि नगर में स्वच्छंद संकीर्तन होगा आकर निवेदन किया। हिंदू धर्म असीम रूप से बढ़ गया है, क्योंकि सदैव हरि हरि की ध्वनि होती है। हमें इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनाई पड़ता। एक यवन ने कहा, हिंदू कृष्ण कृष्ण कहते हैं और वे हंसते हैं, रोते हैं, नाचते हैं, कीर्तन करते हैं और जमीन पर गिरकर तूली में लौटते हैं। हिंदू लोग हरि हरि का उच्चारण करके कोलाहल मचाते हैं। यदि राजा पातः इसे सुन ले तो निश्चय ही आपको दंड देगा। तब मैंने इन यवनों से पूछा, मैं जानता हूँ कि ये हिंदू स्वभाव से हरि हरि का उच्चारण करते हैं। हिंदू लोग हरि का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि वह उनके ईश्वर का नाम है, किंतु तुम लोग मांस भक्षी मुसलमान हो, फिर तुम लोग हिंदुओं के ईश्वर का नाम क्यों लेते हो? उस मलेच्छ ने उत्तर दिया, कभी कभी मैं हिंदुओं से मजाक करता हूँ। उनमें से कुछ कृष्णदास कहलाते हैं और कुछ रामदास, उनमें से कुछ हरिदास कहलाते हैं। वे सदैव हरि हरि का उच्चारण करते हैं। इस तरह मैंने सोचा कि ये किसी के घर से धन चुराएंगे। तभी से मेरी जीभ भी निरंतर हरि हरि ध्वनि का उच्चारण करती है, यद्यपि मेरी इच्छा नहीं होती कि इसे कहूँ, किंतु तो भी मेरी जीभ वही कहे जाती है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। दूसरे यवन ने कहा, कृपया मेरी सुने। जिस दिन से मैंने कुछ हिंदुओं के साथ इस तरह मजाक किया है, तब से मेरी जीभ हरे कृष्ण का मंत्र जपने लगी है और उसे त्यागती नहीं। मैं नहीं जानता कि ये हिंदू कौन सा मंत्र और कौन सी जड़ी बूटी जानते हैं। यह सब सुनने के बाद मैंने सारे मलेच्छों को अपने अपने घरों को भेज दिया। तब 5-7 नास्तिक हिंदू मेरे पास आए। मेरे पास आकर कुछ हिंदुओं ने शिकायत की, निमाई पंडित ने तो हिंदू धर्म के सिद्धांतों को तोड़ दिया है। उसने संकीर्तन प्रणाली चलाई है जिसे हमने किसी भी शास्त्र में नहीं सुना। जब हम मंगल चंडी तथा विषहरी की पूजा के लिए रात्रि जागरण करके धार्मिक उत्सव मनाते हैं, तब बाजा बजाना, नाचना तथा कीर्तन करना निसंदेह उचित प्रथा है। निमाई पंडित पहले तो बहुत अच्छा लड़का था, किंतु जब से वह गया से होकर लौटा है, वह अलग आचरण करने लगा है। अब वह सभी प्रकार के गाने जोर से गाता है, तालियां बजाता है, मृदंग और करताल बजाता है तथा इतनी ऊंची आवाज में शोर करता है कि हमारे कान बहरे हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि वह क्या खाता है जिससे उन्मत्त होकर वह नाचता है, गाता है, कभी हंसता है, रोता है, गिरता है, कूदता है और भूमि पर लौटने लगता है। उसने संकीर्तन करके सारे लोगों को एक तरह से पागल बना दिया है। रात में हम सो नहीं पाते, हम सदा जागते रहते हैं। अब उसने अपना निमाई नाम छोड़कर गौर हरि नाम शुरू किया है। उसने हिंदू धर्म के धार्मिक सिद्धांतों को नष्ट कर दिया है और अविश्वासियों के अधर्म का सूत्रपात किया है। अब नीच जाति के लोग भी बारंबार हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं। इस पाप कर्म के कारण सारा नवद्वीप नगर वीरान हो जाएगा। हिंदू शास्त्र के अनुसार ईश्वर का नाम सबसे शक्तिशाली मंत्र है। यदि हर कोई नाम संकीर्तन सुनता है तो मंत्र की शक्ति जाती रहेगी। मान्यवर, आप इस नगर के शासक हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सभी आपके संरक्षण में हैं। अतएव आप कृपया निमाई पंडित को बुलाएं और उससे नगर छोड़ने के लिए कहें। उसकी शिकायतें सुनने के बाद मैंने मीठी वाणी में उनसे कहा, आप लोग घर जाएं, मैं अवश्य ही निमाई पंडित को इस हरे कृष्ण आंदोलन को चालू रखने से मना कर दूंगा। मैं जानता हूं कि नारायण हिंदुओं के परमेश्वर हैं और मेरी समझ में आप वही नारायण हैं। मैं अपने अंतःकरण में ऐसा अनुभव करता हूं। काजी को इस प्रकार सुंदर वचन बोलते हुए सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसका स्पर्श किया और हंसते हुए इस प्रकार बोले, आपके मुख से कृष्ण के पवित्र नाम के उच्चारण ने आश्चर्य कर दिखाया है। इसने आपके सारे पाप कर्मों के फलों को निर्मूल कर दिया है। अब आप नितांत शुद्ध बन गए हैं। क्योंकि आपने हरि, कृष्ण तथा नारायण भगवान के इन तीन पवित्र नामों का उच्चारण किया है। अब आप निसंदेह परम भाग्यशाली और पुण्यात्मा हैं। यह सुनकर काजी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत ही महाप्रभु के चरण कमलों का स्पर्श किया और मीठी वाणी में इस प्रकार कहा, केवल आपकी कृपा से ही मेरे बुरे विचार दूर हो सके हैं। अब मुझ पर कृपा करें जिससे मेरी भक्ति आप पर स्थिर रहे। महाप्रभु ने कहा, मैं आपसे एक दान मांगता हूँ। आप वचन दें कि कम से कम नदिया जिले में यह संकीर्तन आंदोलन रोका नहीं जाएगा। काजी ने कहा, भविष्य में मेरे वंश में जितने भी लोग उत्पन्न होंगे उन्हें मैं यह कड़ी चेतावनी देता हूँ कि कोई भी संकीर्तन आंदोलन को न रोके। यह सुनकर महाप्रभु हरी हरी कहते हुए उठ खड़े हुए। उनके पीछे पीछे अन्य सारे वैष्णव भी पवित्र नाम की ध्वनि करते हुए खड़े हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करने चले गए और काजी भी प्रसन्न मन से उनके साथ गया। महाप्रभु ने काजी से घर लौट जाने के लिए कहा। उसके बाद शची माता के पुत्र महाप्रभु नाचते नाचते अपने घर आए। यह घटना काजी तथा उस पर भगवान की कृपा से संबंधित है। जो भी इसे सुनता है वह सारे अपराधों से छूट जाता है। एक दिन नित्यानंद प्रभु तथा श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों भाई श्रीवास ठाकुर के पवित्र घर में नृत्य कर रहे थे। उस समय एक विपत्ति आ पड़ी। श्रीवास ठाकुर के पुत्र का देहांत हो गया। फिर भी श्रीवास ठाकुर रंच भर भी दुखी नहीं हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मृत पुत्र से ज्ञान की बातें कहलवाई और तब दोनों भाई स्वयं श्रीवास ठाकुर के पुत्र बन गए। तत्पश्चात महाप्रभु ने अपने सभी भक्तों को वरदान दिया। उन्होंने नारायणी के प्रति विशेष सम्मान प्रकट करते हुए उसे अपना शेष बचा प्रसाद दिया। एक दर्जी था जो मांस बख्शी था, किंतु वह श्रीवास ठाकुर के कपड़े सिला करता था। महाप्रभु ने उस पर कृपा करके उसे अपना स्वरूप दिखलाया। मैंने देख लिया है कहते हुए तथा भाव विभोर होकर पागल की तरह नाचते हुए वह दर्जी उच्च कोटि का वैष्णव बन गया। भाव में महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर से अपनी वंशी मांगी, किंतु श्रीवास ठाकुर ने उत्तर दिया, आपकी वंशी तो गोपियों ने चुरा ली है। यह उत्तर सुनकर महाप्रभु ने आवेश में कहा, बोलते चलो। इस प्रकार श्रीवास ने श्री वृंदावन की लीलाओं के दिव्य रस का वर्णन किया। सबसे पहले श्रीवास ठाकुर ने वृंदावन लीलाओं की दिव्य मधुरता का वर्णन किया, जिन्हें सुनकर महाप्रभु के चित्त में हर्ष अत्यंत बढ़ने लगा। तत्पश्चात महाप्रभु ने उनसे बारंबार कहा, बोलते चलो। इस तरह श्रीवास ने वृंदावन की लीलाओं का वर्णन विस्तार से बारंबार किया। श्रीवास ठाकुर ने विस्तार से बतलाया कि किस तरह गोपियां कृष्ण की वंशी की धुन से वृंदावन के जंगलों की ओर आकृष्ट हुई थी और किस तरह वे जंगल में उनके साथ साथ विहार करती थी। श्रीवास पंडित ने 6 ऋतुओं में की गई सारी लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने मधुपान करने, रात नृत्य रचाने, यमुना में तैरने तथा अन्य ऐसी घटनाओं का वर्णन किया। जब महाप्रभु ने अत्यंत हर्षित होकर सुनते हुए कहा, कहते चलो, तब श्रीवास ठाकुर ने रास लीला का वर्णन किया जो दिव्य रस से भरपूर है। इस तरह महाप्रभु को कहते कहते और श्रीवास ठाकुर को सुनाते सुनाते प्रातः काल हो गया तो महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर का आलिंगन करके उन्हें तुष्ट किया। तत्पश्चात श्री चंद्रशेखर आचार्य के घर में कृष्ण की लीलाओं का नाटकीय अभिनय हुआ। स्वयं महाप्रभु ने कृष्ण की मुख्य पटरानी रुक्मणी का अभिनय किया। महाप्रभु कभी देवी दुर्गा का अभिनय करते, कभी लक्ष्मी या मुख्य शक्ति योग माया का। पलंग पर बैठकर उन्होंने सारे उपस्थित भक्तों को भगवत प्रेम प्रदान किया। एक दिन जब महाप्रभु ने अपना नृत्य समाप्त किया, तभी एक स्त्री किसी ब्राह्मण की पत्नी वहां आई और उसने महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। क्यों ही वह स्त्री बारंबार उनके चरणों की धूल लेने लगी, महाप्रभु को अपार दुख हुआ। वे तुरंत ही दौड़े दौड़े गंगा नदी में गए और उस स्त्री के पाप फलों को दूर करने के लिए नदी में कूद पड़े। नित्यानंद प्रभु तथा हरिदास ठाकुर ने उन्हें पकड़कर नदी से निकाला। उस रात महाप्रभु विजय आचार्य के घर पर रुके। प्रातः काल महाप्रभु अपने भक्तों को साथ लेकर घर लौट आए। एक दिन महाप्रभु गोपियों के भाव में अपने घर बैठे हुए थे। वे विरह से अत्यंत खिन्न होकर गोपी गोपी पुकार रहे थे। महाप्रभु का दर्शन करने आया हुआ एक विद्यार्थी चकित था कि वे गोपी गोपी पुकार रहे हैं। अतएव वह इस प्रकार बोला, आप भगवान कृष्ण के यशस्वी एवं पवित्र नाम का उच्चारण करने के बदले गोपी गोपी क्यों पुकार रहे हैं? आप ऐसा करने से कौन सा पुण्य प्राप्त करेंगे? मूर्ख विद्यार्थी की बात सुनकर महाप्रभु बहुत क्रुद्ध हुए और उन्होंने अनेक प्रकार से भगवान कृष्ण को फटकार लगाई। फिर वे लाठी उठाकर उस विद्यार्थी को मारने उठे। वह विद्यार्थी डर के मारे भागा तो महाप्रभु उसके पीछे दौड़ने लगे, किंतु भक्तों ने किसी तरह उन्हें रोका। भक्तों ने महाप्रभु को शांत किया और उन्हें घर ले आए। वह विद्यार्थी भागकर अन्य विद्यार्थियों की टोली में गया। वह ब्राह्मण विद्यार्थी भागकर वहां गया जहां 1000 विद्यार्थी एक साथ पढ़ रहे थे। वहां उसने उनसे इस घटना का वर्णन किया। यह घटना सुनकर सारे विद्यार्थी अत्यधिक क्रुद्ध हो गए और एकजुट होकर महाप्रभु की आलोचना करने लगे। उन्होंने आरोप लगाया, अकेले निमाई पंडित ने ही सारा देश भ्रष्ट कर दिया है। वह कुलीन ब्राह्मण को आघात पहुंचाना चाहता है, उसे धार्मिक सिद्धांतों से कोई भय नहीं रहा। यदि वह फिर से ऐसा निर्मम कार्य करता है तो हम अवश्य ही बदला लेंगे और उसे मारेंगे। वह कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति है कि हमें ऐसा करने से रोक सकता है? जब सारे विद्यार्थियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु की निंदा करते हुए ऐसा निश्चय किया, तब उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। यद्यपि वे सभी विद्वान थे, किंतु इस अपराध के कारण उनमें ज्ञान का सार प्रकट नहीं हो रहा था। किंतु दंभी विद्यार्थी विनीत नहीं हुए, उल्टे वे इस घटना की चर्चा कहीं भी और सर्वत्र करते रहे। वे हंसी हंसी में महाप्रभु की आलोचना करते रहे। सर्वज्ञ होने के नाते श्री चैतन्य महाप्रभु इन विद्यार्थियों की दुर्गति समझ गए। फलतः वे घर पर ही बैठकर उनको उभारने पर विचार करने लगे। महाप्रभु ने सोचा, सारे तथा कथित अध्यापक तथा विज्ञानी एवं उनके विद्यार्थी धर्म के नियमों, सकाम कर्मों तथा तपस्या का पालन करते हैं, फिर भी वे साथ साथ निंदक एवं धूर्त होते हैं। यदि मैं इन्हें भक्ति के लिए प्रेरित न करूं, तो निंदा अपराध करने के कारण इनमें से कोई भी भक्ति ग्रहण न कर सकेगा। मैं समस्त पतितों का उद्धार करने आया हूं, किंतु अभी तो इसके ठीक विपरीत घटना घटी। इन दूरतों का किस तरह उद्धार हो सकता है? ये किस तरह लाभान्वित हो सकते हैं? यदि ये दूरत मुझे नमस्कार करें तो इनके सारे पापों के बल भी नष्ट हो जाएंगे। फिर यदि मैं इन्हें प्रेरित करूं तो ये भक्ति करने लगेंगे। मुझे इन सभी पतितों का अवश्य ही उद्धार करना चाहिए जो मेरी निंदा करते हैं और मुझे नमस्कार नहीं करते। मैं संन्यास आश्रम स्वीकार करूंगा, क्योंकि इस प्रकार लोग मुझे सन्यासी जानकर नमस्कार करेंगे। नमस्कार करने से उनके सारे पाप कर्मों के फल दूर हो जाएंगे। फिर मेरी कृपा से उनके शुद्ध हृदयों में भक्ति जागृत होगी। इस संसार के सारे श्रद्धा विहीन दूरतों पाखंडियों का उद्धार इसी विधि से हो सकता है। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तर्क का साथ यही है। इस दृढ़ निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद महाप्रभु घर पर ही रहे। इसी समय केशव भारती नदिया नगरी में पधारे। महाप्रभु ने उनको सादर नमस्कार किया और उन्हें अपने घर पर आमंत्रित किया। उन्हें अच्छी तरह से भोजन कराने के बाद महाप्रभु ने उनसे निवेदन किया, हे महाशय, आप साक्षात नारायण हैं, अब एव मुझ पर कृपा करें। कृपया मेरा इस बहुबंधन से उद्धार करें। केशव भारती ने महाप्रभु को उत्तर दिया, आप परम ईश्वर परमात्मा हैं, मैं वही करूंगा जो आप मुझसे करवाएंगे। मैं आपसे स्वतंत्र नहीं हूं। यह कहकर गुरु केशव भारती अपने गांव कटवा वापस चले गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहां जाकर संन्यास ग्रहण कर लिया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया तब सारे आवश्यक कार्य संपन्न करने के लिए उनके साथ तीन व्यक्ति थे, नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर आचार्य तथा मुकुंद दत्त। इस तरह मैंने आदि लीला की घटनाओं का संक्षेप में वर्णन किया है। श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने इनका विस्तृत वर्णन चैतन्य भागवत में किया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो माता यशोदा के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे, वे ही अब माता शची के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं और चार प्रकार के भक्ति भावों का आस्वादन कर रहे हैं। कृष्ण के प्रति श्रीमती राधा रानी के प्रेम के रस का आस्वादन करने तथा कृष्ण रूप आनंद के आकार को समझने के लिए ही स्वयं कृष्ण ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा रानी के भाव को अंगीकार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन गोपियों का भाव स्वीकार किया जो वजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में मानती हैं। यह तो दृढ़ निष्कर्ष निकलता है कि गोपिकाओं का भाव केवल कृष्ण के ही साथ संभव है, किसी अन्य के साथ नहीं। उनका रंग श्यामल है, सिर पर मोर पंख है, गुंजा माला है और वालों जैसी वेशभूषा है। उनका शरीर तीन स्थानों से मुड़ा है और वे होंठों पर बांसुरी रखे हुए हैं। यदि भगवान कृष्ण अपने इस आदि रूप को छोड़कर कोई अन्य विष्णु रूप धारण करते हैं तो उनके निकट जाने पर भी गोपियों में भाव जागृत नहीं होता। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में चार विजयी हाथों वाले तथा अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले नारायण का रूप प्रकट किया, किंतु इस उत्कृष्ट रूप को देखकर गोपियों की उर्मी पूर्ण भावनाएं संकुचित हो गई। अतएव विद्वान व्यक्ति भी उन गोपियों के भावों को नहीं समझ सकते जो नंद महाराज के पुत्र भगवान कृष्ण के मूल स्वरूप पर केंद्रित हैं। कृष्ण के परम रस में गोपियों के अद्भुत भाव आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ा रहस्य है। वसंत ऋतु में जब रास नृत्य चल रहा था तो कृष्ण सहसा घटना स्थल से यह दिखाने के लिए अंतर्धान हो गए कि वे श्रीमती राधा रानी के साथ एकांत वास चाहते हैं। कृष्ण एकांत कुंज में बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे कि श्रीमती राधा रानी उधर से गुजरे, किंतु तभी गोपियां वहां आ पहुंची जैसे कि कोई खोजी सैन्य दल हो। दूर से कृष्ण को देखकर गोपियों ने कहा, जरा देखो ना, ये रहे कुंज के भीतर नंद महाराज के पुत्र कृष्ण। क्यों ही कृष्ण ने सारी गोपियों को देखा, वे भाव विवहल हो उठे। इस तरह वे अपने आप को छिपा नहीं सके और भयवश वे हतप्रभ हो गए। कृष्ण अपना चतुर्भुज नारायण रूप धारण करके वहां बैठ गए। जब सारी गोपियां आई तो उन्हें देखकर वे इस प्रकार बोली, ये कृष्ण नहीं भगवान नारायण है। यह कहकर उन्होंने नमस्कार किया और उनकी सादर स्तुति इस प्रकार की, हे भगवान नारायण, हम आपको सादर नमस्कार करती हैं। आप हम पर कृपालु हो, कृपया आप हमें कृष्ण की संगति प्रदान करें और इस प्रकार हमारे शोक को दूर करें। ऐसा कहने के बाद तथा नमस्कार करके सारी गोपियां इधर उधर चली गई। तब श्रीमती राधा रानी आई और भगवान कृष्ण के समक्ष प्रकट हुई। जब भगवान कृष्ण ने राधा रानी को देखा तो उन्होंने उनके साथ परिहास करने के लिए अपना चतुर्भुज रूप बनाए रखना चाहा, किंतु श्रीमती राधा रानी के सम्मुख श्री कृष्ण को अपनी दो अतिरिक्त भुजाएं छिपानी पड़ी। कृष्ण ने उनके सामने अपनी चारों भुजाएं रखने का पूरा प्रयत्न किया, किंतु वे ऐसा कर पाने में पूरी तरह विफल रहे। राधा रानी के शुद्ध भाव का प्रभाव अचिंत्य रूप से इतना महान है कि उसने कृष्ण को अपना आदि द्विभुज रूप धारण करने के लिए बाध्य कर दिया। रास नृत्य प्रारंभ होने के पूर्व भगवान कृष्ण ने परिहास वश अपने आप को कुंज में छिपा लिया। जब मृगली के समान नेत्रों वाली गोपियां आई तो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा कृष्ण ने अपने आप को छिपाने के लिए अपना सुंदर चतुर्भुज रूप प्रकट किया। किंतु जब श्रीमती राधा रानी वहां आई तो वे उनके सामने अपना वह चतुर्भुज रूप नहीं रख पाए। यह श्रीमती राधा के प्रेम की अद्भुत महिमा है। व्रज भूमि के राजा नंद अब श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र हैं और व्रज भूमि की महारानी माता यशोदा चैतन्य महाप्रभु की माता शची देवी हैं। जो पहले नंद महाराज के पुत्र थे वे अब श्री चैतन्य महाप्रभु हैं और जो पहले कृष्ण के भाई बलदेव थे वे अब नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के भाई हैं। श्री नित्यानंद प्रभु को सदैव वात्सल्य दास्य तथा सख्य भाव का अनुभव होता है। वे श्री चैतन्य महाप्रभु की सदा उसी तरह से सहायता करते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु ने दिव्य प्रेमा भक्ति का वितरण करके सारे जगत को अपलावित कर दिया। उनके चरित्र तथा उनके कार्यों को कोई नहीं समझ सकता। श्रील अद्वैत आचार्य प्रभु एक भक्त के अवतार रूप में प्रकट हुए। वे कृष्ण की श्रेणी में हैं, किंतु वे इस धरा पर भक्ति का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए। उनके सहज भाव सदा सख्य तथा दास्य भाव के स्तर पर होते थे, किंतु महाप्रभु कभी कभी उनके साथ अपने आध्यात्मिक गुरु जैसा व्यवहार करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तगण जिनमें श्रीवास ठाकुर प्रमुख हैं अपनी अपनी भावपूर्ण मनोदशा से महाप्रभु की सेवा करते हैं। महाप्रभु के सारे निजी पार्षद यथा गदाधर पंडित, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय तथा रूप गोस्वामी आदि चहो गोस्वामी अपने अपने दिव्य रसों में स्थित हैं। इस तरह महाप्रभु विभिन्न दिव्य रसों के वशीभूत हो जाते हैं। कृष्ण लीला में भगवान का वर्ण सांवला है। वे वंशी बजाते हुए ग्वाल बाल की तरह आनंद मग्न रहते हैं। अब वही व्यक्ति गौर वर्ण धारण करके कभी ब्राह्मण के रूप में लीला करते हैं और कभी सन्यासी के रूप में। इसीलिए स्वयं भगवान गोपी भाव धारण करके अब नंद महाराज के पुत्र को हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे प्रिय पति कहकर संबोधित करते हैं। वे कृष्ण हैं, फिर भी उन्होंने गोपी भाव धारण किया है। ऐसा क्यों है? यही तो भगवान का अचिंत्य चरित्र है, जिसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। संसारी तर्कों के द्वारा महाप्रभु के चरित्र के विरोधाभासों को नहीं समझा जा सकता। फलस्वरूप किसी को इस संबंध में कोई संशय नहीं करना चाहिए। मनुष्य को केवल कृष्ण की अचिंत्य शक्ति को समझने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा वह यह नहीं समझ सकेगा कि ऐसे विरोध किस तरह संभव होते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अचिंत्य तथा अद्भुत हैं। उनका भाव अद्भुत है, उनके गुण अद्भुत हैं और उनका व्यवहार अद्भुत है। यदि कोई व्यर्थ ही इन संसारी तर्कों में उलझा रहता है और इसे स्वीकार नहीं करता, वह कुंपी पाक नरक में तेल में उबलता रहता है, उसका उद्धार नहीं होता। भौतिक प्रकृति से परे कोई भी दिव्य बात अचिंत्य कहलाती है, जबकि सारे तर्क संसारी होते हैं। क्योंकि संसारी तर्क दिव्य विषयों को स्पर्श भी नहीं कर पाते, अतएव मनुष्य को संसारी तर्कों से दिव्य विषयों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति की चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत लीलाओं में दृढ़ निष्ठा है, वही उनके चरण कमलों तक पहुंच पाता है। इस आख्यान में मैंने भक्ति के सार को बतलाया है। जो कोई भी इसे सुनता है, उसमें भगवान की शुद्ध भक्ति विकसित होती है। यदि मैं पहले से लिखी बातों की पुनरावृत्ति करूं, तो इस शास्त्र के प्रयोजन का आस्वादन कर सकूंगा। हम श्रीमद् भागवत शास्त्र में इसके रचयिता श्री व्यास देव के आचरण को देख सकते हैं। वे कथा कहकर उसको बारंबार दोहराते हैं। अतएव मैं आदि लीला के अध्यायों की गणना करूंगा। पहले अध्याय के अंतर्गत मैं गुरु को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि यह शुभ लेखन का प्रारंभ है। दूसरे अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु के तत्व की व्याख्या की गई है। वे महाराज नंद के पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, अब माता शची के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। तृतीय अध्याय में उनके प्राकट्य के सामान्य कारण का वर्णन है। तीसरे अध्याय में भगवत प्रेम के वितरण का विशेष वर्णन हुआ है। इसमें युग धर्म का भी वर्णन है, जो भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का सहजता से वितरण और उनसे प्रेम करने की विधि का प्रचार करना है। चौथे अध्याय में उनके प्राकट्य के प्रमुख कारण का वर्णन है, जो उन्हीं की दिव्य प्रेमा भक्ति तथा उनके ही माधुर्य के रस का आस्वादन करने के लिए है। पांचवें अध्याय में श्री नित्यानंद प्रभु के तत्व का वर्णन हुआ है, जो रोहिणी पुत्र बलराम ही हैं। छठे अध्याय में अद्वैत आचार्य के तत्व पर विचार किया गया है, वे महाविष्णु के अवतार हैं। सातवें अध्याय में पंच तत्व श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत गदाधर तथा श्रीवास का वर्णन है। वे सभी भगवत प्रेम का सर्वत्र प्रचार करने के लिए संयुक्त हुए हैं। आठवें अध्याय में श्री चैतन्य की लीलाओं का वर्णन किए जाने का कारण दिया गया है। इसमें कृष्ण नाम की महानता का भी वर्णन हुआ है। नवें अध्याय में भक्ति रूपी कल्प वृक्ष का वर्णन है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं माली हैं, जिन्होंने इसका आरोपण किया है। दसवें अध्याय में मुख्य तने की शाखाओं, उप शाखाओं एवं उनके फलों के वितरण का वर्णन हुआ है। अध्यारहवें स्कंध में श्री नित्यानंद प्रभु की शाखा वंश का वर्णन है। बारहवें अध्याय में श्री अद्वैत प्रभु नामक शाखा का वर्णन है। तेरहवें अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म का वर्णन है, जो कृष्ण नाम कीर्तन चलते समय हुआ। चौदहवें अध्याय में महाप्रभु की कुछ बाल लीलाओं का वर्णन है। पंद्रहवें अध्याय में महाप्रभु की पौगंड लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन हुआ है। सोलहवें अध्याय में मैंने कैशोर अवस्था, युवावस्था के पूर्व की लीलाओं का संकेत किया है। सत्रहवें अध्याय में विशेषतया उनकी युवावस्था की लीलाओं का वर्णन हुआ है। इस तरह प्रथम कांत में 17 प्रकार के विषय हैं, जो आदि लीला के नाम से विख्यात हैं। इनमें से 12 इस ग्रंथ के आमुख के रूप में हैं। मैंने आमुख के अध्यायों के पश्चात 5 अध्यायों में 5 दिव्य रसों का वर्णन किया है। मैंने विस्तृत वर्णन की अपेक्षा इनका संक्षिप्त वर्णन किया है। श्री नित्यानंद प्रभु के आदेश तथा बल पर श्री वृंदावन दास ठाकुर ने अपने ग्रंथ चैतन्य मंगल में उन विषयों का विस्तार से वर्णन किया है, जिनका वर्णन मैंने नहीं किया। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अद्भुत एवं अनंत हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी तथा शेष नाग जैसे भी उनका पार नहीं पा सकते। कोई भी व्यक्ति जो इस विचित्र विषय के किसी भी अंश को कहता या सुनता है, उसे बहुत जल्दी ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की अहेतुकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। यहाँ लेखक पुनः पंच तत्व का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास तथा महाप्रभु के सारे भक्तों, मैं वृंदावन के समस्त निवासियों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं विनीत भाव से उनके चरण कमलों को अपने शीश पर रखना चाहता हूँ। मैं गोस्वामियों के चरण कमलों को अपने सिर पर रखना चाहता हूँ। उनके नाम है श्री स्वरूप दामोदर, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी तथा श्री जीव गोस्वामी। उनके चरण कमलों को अपने सिर पर रखकर और सदा उनकी सेवा करने की आशा से मैं श्री कृष्ण दास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरिता अमृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरिता अमृत आदि लीला के 17वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें महाप्रभु की यौवन लीलाओं का वर्णन हुआ है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।